नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। इनसाइड एप्पल एडम लेशिंस्की की बिजनेस और प्रबंधन संबंधी पुस्तक है, जो स्टीव जॉब्स की वापसी के बाद एप्पल के असाधारण पुनरुत्थान और उसके काम करने के तरीकों का विश्लेषण करती है। यह जीवनी नहीं बल्कि संगठनात्मक संस्कृति, उत्पाद केंद्रित रणनीति और नेतृत्व की पड़ताल है। लेशिंस्की अनेक साक्षात्कारों तथा एप्पल पर अपनी रिपोर्टिंग के आधार पर बताते हैं कि कंपनी ने सीमित उत्पादों पर असाधारण गहराई से काम करके आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे बड़े दांव सफल किए हैं। पुस्तक का केंद्रीय प्रश्न है कि अत्यधिक गोपनीय, कठोर और जवाबदेही प्रधान संस्था लगातार प्रभावशाली उत्पाद कैसे बना सकती है। इसमें डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल, कार्यात्मक संगठन, टॉप 100 बैठक और आपूर्तिकर्ताओं के साथ एप्पल के संबंध जैसे तंत्रों को समझाया गया है। साथ ही यह स्टीव जॉब्स के बाद की नेतृत्व स्थिरता और टिम कुक के दौर में कंपनी की दिशा को भी देखती है। इसका उद्देश्य एप्पल की नकल का सरल नुस्खा देना नहीं, बल्कि उसके विशिष्ट अनुशासन, उसके लाभों और मानवीय लागतों को सामने रखना है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, गोपनीयता को नियंत्रण नहीं, उत्पाद केंद्रित एकाग्रता के साधन के रूप में देखना। पुस्तक में एप्पल की गोपनीयता केवल नए उत्पाद के लॉन्च तक सीमित जनसंपर्क नीति नहीं है। लेशिंस्की के अनुसार इसका बाहरी रूप प्रतिस्पर्धियों, मीडिया और ग्राहकों से जानकारी बचाना है, जबकि आंतरिक रूप कर्मचारियों के बीच भी जानकारी को आवश्यकता के आधार पर सीमित रखना है। अनेक कर्मचारी अपने काम के छोटे हिस्से और उससे जुड़े लोगों तक ही पूरी तरह परिचित रहते हैं। इससे कंपनी का लक्ष्य यह होता है कि लोग व्यापक बैठकों, आंतरिक राजनीति और असंबद्ध योजनाओं में समय बांटने के बजाय अपने विशेषज्ञ क्षेत्र में गहराई प्राप्त करें। किसी आगामी उत्पाद के बारे में कम लोगों को पता होने से आश्चर्य का प्रभाव, संदेश पर नियंत्रण और प्रतिद्वंद्वियों पर बढ़त भी मिलती है। लेकिन पुस्तक इसे निर्विवाद आदर्श नहीं कहती। ऐसी व्यवस्था अलगाव, तनाव और सीमित पारदर्शिता पैदा कर सकती है। कर्मचारी उपलब्धि और प्रतिष्ठित उत्पाद पर काम करने के बदले निजी सुविधा तथा व्यापक संगठनात्मक समझ का समझौता कर सकते हैं। इसीलिए मुख्य सीख गोपनीयता को ज्यों का त्यों अपनाना नहीं है। उपयोगी प्रश्न यह है कि किन परियोजनाओं में सूचना का अनुशासित विभाजन फोकस बढ़ाता है और किन परिस्थितियों में सहयोग, भरोसे तथा गुणवत्ता के लिए खुला संवाद अधिक आवश्यक होता है। दूसरा, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल से व्यक्तिगत जवाबदेही तय करना। एप्पल की चर्चित कार्य प्रणालियों में डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल या DRI प्रमुख है। इसका अर्थ है कि किसी निर्णय, काम या परिणाम के लिए एक स्पष्ट व्यक्ति का नाम तय हो। बैठकों और कार्यसूचियों में जिम्मेदारी किसी धुंधले विभाग, समिति या सामूहिक पदनाम के पास नहीं छोड़ी जाती। यह व्यवस्था विशेष रूप से उन संगठनों में उपयोगी है जहां उत्पाद के छोटे निर्णय भी समय, गुणवत्ता और ग्राहक अनुभव पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। जब उत्तरदायी व्यक्ति स्पष्ट होता है तो अनुवर्ती कार्रवाई, निर्णय की गति और समस्या के समय जवाबदेही मजबूत होती है। लेशिंस्की इसे एप्पल की उस संस्कृति से जोड़ते हैं जिसमें उत्कृष्टता की अपेक्षा ऊंची और प्रदर्शन की समीक्षा कठोर है। फिर भी DRI का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति अकेले काम करता है या सामूहिक विशेषज्ञता अप्रासंगिक हो जाती है। जटिल उत्पादों में डिजाइन, इंजीनियरिंग, संचालन और विपणन का योगदान आवश्यक रहता है। अंतर इतना है कि समन्वय के बाद अंतिम स्वामित्व अस्पष्ट नहीं रहता। किसी दूसरी संस्था के लिए व्यावहारिक सबक यह है कि हर छोटे काम पर औपचारिक पद न बनाया जाए, बल्कि महत्वपूर्ण निर्णयों, ग्राहक प्रभावित समस्याओं और अंतर विभागीय कामों में स्पष्ट स्वामी नियुक्त किया जाए। बिना अधिकार के जवाबदेही देना उल्टा नुकसान कर सकता है, इसलिए जिम्मेदारी के साथ निर्णय लेने की वास्तविक क्षमता भी जरूरी है। तीसरा, जनरल मैनेजमेंट के बजाय कार्यात्मक विशेषज्ञता पर आधारित संगठन इनसाइड एप्पल एप्पल को पारंपरिक बहु उत्पाद कंपनियों से अलग बताती है, क्योंकि उसका ढांचा बड़े पैमाने पर कार्यात्मक विशेषज्ञता के इर्द गिर्द संगठित था। अर्थात डिजाइन, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, संचालन, विपणन और अन्य प्रमुख क्षमताओं में गहरे विशेषज्ञ पूरे संगठन के स्तर पर प्रभाव रखते हैं। यह उस मॉडल से भिन्न है जिसमें अलग अलग उत्पाद इकाइयों के जनरल मैनेजर अपने लाभ, बजट और संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। कार्यात्मक ढांचे का लाभ यह है कि उत्कृष्टता का मानक किसी एक उत्पाद तक सीमित नहीं रहता। उदाहरण के लिए, एक केंद्रीय विशेषज्ञ समूह कई उत्पादों और ग्राहक संपर्क बिंदुओं में एक रूप गुणवत्ता बनाए रखने में सहायता कर सकता है। इससे एप्पल को सीमित उत्पाद श्रृंखला पर भारी ध्यान देने और हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर तथा सेवाओं के अनुभव को जोड़ने में मदद मिली। दूसरी ओर, यह मॉडल तभी चल सकता है जब शीर्ष नेतृत्व के पास गहरी उत्पाद समझ और कार्यों के बीच विवाद सुलझाने की क्षमता हो, अन्यथा निर्णय धीमे हो सकते हैं और विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र की प्राथमिकता को सर्वोपरि मान सकते हैं। पुस्तक का महत्वपूर्ण संकेत यह है कि संरचना अपने आप नवाचार नहीं बनाती। एप्पल की संरचना उसके सीमित फोकस, केंद्रीकृत निर्णय और श्रेष्ठ प्रतिभा की अपेक्षा के साथ मिलकर काम करती थी। इसलिए किसी कंपनी को अपने उत्पादों की विविधता और नेतृत्व क्षमता देखे बिना इसे अपनाने का दावा नहीं करना चाहिए। चौथा, टॉप 100 और नेतृत्व के भीतर प्राथमिकताओं का गोपनीय संरेखण। लाइसेंस की एप्पल के टॉप 100 को एक वार्षिक अत्यंत गोपनीय नेतृत्व अभ्यास के रूप में प्रस्तुत करते हैं। इसमें केवल पदानुक्रम के आधार पर नहीं बल्कि कंपनी के लिए महत्वपूर्ण माने जाने वाले लगभग 100 नेताओं को स्टीव जॉब्स के साथ एकांत बैठक के लिए चुना जाता था। इस प्रथा का मूल्य केवल चयन की प्रतिष्ठा में नहीं था, यह नेतृत्व समूह को एप्पल की अगली प्राथमिकताओं, उत्पाद दिशा और अपेक्षित मानकों के साथ सीधे जोड़ने का माध्यम थी। तेजी से बढ़ती कंपनी में शीर्ष नेतृत्व का संदेश परतों से गुजरते हुए अक्सर कमजोर या विकृत हो जाता है। सीमित संख्या में प्रभावशाली संचालकों को साझा संदर्भ देने से निर्णयों में अधिक एकरूपता आ सकती है। यह व्यवस्था यह भी दिखाती है कि एप्पल नेतृत्व को केवल औपचारिक संगठन चार्ट से नहीं बल्कि प्रभाव, क्षमता और रणनीतिक भरोसे के आधार पर देखता था। फिर भी इस मॉडल में जोखिम भी है। चयन प्रक्रिया अपारदर्शी होने पर, बाहर रह गए सक्षम लोगों में दूरी या असंतोष पैदा हो सकता है, और यदि पूरा तंत्र एक असाधारण संस्थापक की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर हो तो उत्तराधिकार कठिन बनता है। इसलिए पुस्तक से निकलने वाली व्यापक बात यह है कि वरिष्ठ प्रतिभा के लिए नियमित रणनीतिक संवाद उपयोगी है, लेकिन उसे स्पष्ट विकास मार्ग, विविध दृष्टिकोण और संस्थागत प्रक्रियाओं के साथ संतुलित करना चाहिए। अंत में बड़े दांव, सीमित उत्पाद क्षेत्र और संचालन क्षमता का संयुक्त मॉडल। पुस्तक एप्पल की सफलता को केवल आकर्षक डिजाइन या स्टीव जॉब्स की प्रस्तुति कला का परिणाम नहीं मानती। लाइसेंस की दिखाते हैं कि कंपनी अपेक्षाकृत कम उत्पाद क्षेत्रों में बड़े केंद्रित दांव लगाती थी। आईपॉड, आईफोन और आईपैड जैसे उत्पाद केवल नए उपकरण नहीं थे, वे एप्पल की डिजाइन, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, आपूर्ति और विपणन क्षमताओं को एक साथ लगाने वाले प्रयास थे। ऐसी रणनीति में विफलता का जोखिम भी अधिक होता है, क्योंकि विविध छोटे व्यवसायों का सहारा कम रहता है। एप्पल ने छोटे प्रयोग भी किए, पर उसकी पहचान उन अवसरों से बनी जहां उसने संसाधन, नेतृत्व का ध्यान और आपूर्ति श्रृंखला क्षमता निर्णायक रूप से झोंकी। टिम कुक से जुड़ी संचालन दक्षता का संदर्भ इस कहानी में महत्वपूर्ण है। श्रेष्ठ उत्पाद विचार तब ही बड़े पैमाने पर ग्राहक तक पहुंचता है जब घटकों की उपलब्धता, निर्माण, वितरण और आपूर्तिकर्ता संबंध विश्वसनीय हो। इस प्रकार पुस्तक नवाचार को रचनात्मक विभाग की अलग गतिविधि मानने की भूल से बचाती है। इसका व्यावहारिक निष्कर्ष यह है कि कंपनी को हर अवसर का पीछा करने के बजाय कुछ चुने हुए अवसरों के लिए स्पष्ट मानक तय करने चाहिए, फिर उत्पाद निर्माण और संचालन को आरंभ से जोड़ना चाहिए। फोकस का अर्थ केवल कम परियोजनाएं नहीं बल्कि चुनी परियोजनाओं को पूरा करने की संगठित तैयारी है। निष्कर्ष में इनसाइड एप्पल उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो तकनीकी कंपनियों, उत्पाद प्रबंधन, संगठन डिजाइन, नेतृत्व या संचालन में रुचि रखते हैं। उद्यमी और प्रबंधक इससे यह समझ सकते हैं कि किसी प्रसिद्ध कंपनी की सफलता को केवल करिश्माई संस्थापक, ब्रांड या एक लोकप्रिय उत्पाद से नहीं समझा जा सकता। जवाबदेही, विशेषज्ञता, सूचना नियंत्रण, नेतृत्व, संरेखण और आपूर्ति श्रृंखला जैसी परस्पर जुड़ी व्यवस्थाएं उत्पाद अनुभव को आकार देती हैं। पाठक को इससे तैयार प्रबंधन सूत्रों की सूची नहीं मिलेगी, और यही इसकी सीमा के साथ इसकी उपयोगिता भी है। एप्पल का वातावरण अत्यंत विशिष्ट था, इसलिए उसके कठोर गोपनीयता नियम या केंद्रीकृत नियंत्रण हर संस्था के लिए उपयुक्त नहीं होंगे। पुस्तक का बेहतर उपयोग यह पूछने में है कि अपनी संस्था में फोकस कहां बिखर रहा है, निर्णय का वास्तविक स्वामी कौन है और ग्राहक अनुभव के लिए कौन से कार्यों को अधिक निकटता से जोड़ना चाहिए। इट्स स्टीव जॉब्स की विस्तृत जीवनी की तुलना में यह पुस्तक उनके व्यक्तित्व से कम और एप्पल की कार्यप्रणाली से अधिक सरोकार रखती है। अन्य सामान्य बिजनेस पुस्तकों के विपरीत यह अमूर्त प्रेरक सिद्धांतों के स्थान पर एक विशिष्ट कंपनी के अंदरूनी तंत्रों, उनके लाभों और तनावों पर केंद्रित रहती है। अनेक साक्षात्कारों और रिपोर्टिंग पर आधारित इसका दृष्टिकोण पूर्ण आधिकारिक अंदरूनी इतिहास नहीं है। फिर भी यह एप्पल के रहस्यपूर्ण आवरण के पीछे मौजूद प्रबंधकीय अनुशासन को समझने के लिए मूल्यवान, संक्षिप्त और विचारोत्तेजक अध्ययन है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं एडम लाइसेंस की आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए Amazon लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।